सूरत जासिया। मक्की सूरत है, तरतीब के एतबार से 45 यानी 45 नंबर की सूरा है और मक्की सूरतों में इसका नंबर 65 है, 65। चार रुकू हैं, 37 यानी 37 आयात हैं और 492 492 कलेमात हैं और 2131 2131 कलेमात हैं। सूरत का नाम इसी सूरत के अंदर एक लफ्ज़ आएगा, कौमों की एक हालत पे तस्करा है, तो जासिया कहते हैं झुकी हुई, घुटनों के बल गिरी हुई चीज़। तो ये क्या होगा इसको हम देखेंगे और मक्की सूरतों की तरह इसमें भी तौहीद की बहुत सारी निशानियाँ, बल्कि इब्तदाई आयात में ही हम 6 निशानियाँ देखेंगे कि जिनको देखकर कोई भी अल्लाह ताला को पा सकता है। तो शुरू करते हैं सूरत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम हरूफ मक़त्तात हैं। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है जो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। मक्की सूरतों का अंदाज़ है, पीछे से सूरत दुखान ही की तरह सूरत का आगाज़ है। वहाँ किताब की कसम खाई गई थी, वल किताबिल मुबीन, और यहाँ तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम कहा गया। क्यों? ताकि लोगों को शुरू से पता चल जाए कि ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है जो सब पर गालिब है, अज़ीज़ भी है और हकीम भी है, यानी जिसका हुक्म भी चलता है और जिसके कामों में हिकमत भी है। कोई उसके किसी काम में दखल नहीं दे सकता, कोई उसके फ़ैसलों को बदल नहीं सकता, और वो जो कुछ भी इस किताब में लाता है वो लोगों के फ़ायदे के लिए लाता है। किसी भी सूरत के आखिर में जो अल्लाह ताला की सिफ़ात आती हैं वो बड़ी अहम होती हैं, उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है उस मज़मून से। तो यहाँ अल्लाह ताला की सिफ़त अल-अज़ीज़ से इस टॉपिक का क्या ताल्लुक है कि ये किताब एक गालिब की तरफ से नाफिज़ है। कैसा नहीं है कि कोई ऐसी बात कोई कानून बना दे और उसको पूरा ना करवा सके। जैसे दुनिया में किसी मुल्क में कोई भी हुकूमत बनती है, कोई कानून बनता है, लेकिन बाद में वो पास नहीं होता, लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अल्लाह ताला इतना गालिब है कि जिसने इस किताब में जो भी अहकाम दिए वो उनको नाफिज करने पे भी गालिब है। इसी तरह अल-हकीम क्यों है कि जो हुक्म आए इस किताब में, जो बातें हुई अमल के लिए, जो हुक्म दिए गए वो कोई जज्बाती बातें नहीं थी, कोई झोल नहीं है उसमें, कोई गलती नहीं है। हर फैसला इंसानों के लिए बेहतरीन फैसला है। आज कुछ लोग कुरान पाक के बारे में एतराज़ करते हैं कि मुश्किल है, अमल नहीं हो सकता, बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ें। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने किसी ऐसे काम के करने का हुक्म दिया है जो काबिल अमल नहीं, तो ये बात नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को ना समझ करार देना है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगी कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को किसी ऐसे काम के करने का हुक्म दे दे जो बच्चा नहीं कर सकता, तो बच्चा चाहे अदब में या उसके लिहाज में बात ना करे, बोले ना, लेकिन वो दिल में सोचेगा ज़रूर कि मेरी माँ कैसी बात कर रही है। मसलन छोटे बच्चे, 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को माँ कहे कि अच्छा ये ज़रा डाइनिंग टेबल यहाँ से उठा के दूसरी तरफ रख दो, तो बच्चा क्या सोचेगा? या तो मेरी माँ मजाक कर रही है या मेरी माँ को समझ नहीं है। चले माँ को छोड़े, उस्ताद की बात कर ले। अगर मैं आपसे कहूँ, इस वक्त हम सूरह जासिया पढ़ रहे हैं, और मैं आपसे कहूँ कि अच्छा ठीक है, कल मैं आपसे सूरह फतह का तर्जमा सुनूंगी, जब भी आपने नहीं पढ़ी, तो आप क्या सोचेंगे ये कैसी बात कह रही हैं? तो जब कोई बंदा हमें कोई ऐसी बात का हुक्म दे जो काबिल अमल ना हो, तो वो हमारी नज़र में ना समझ करार पाता है। हम ज़बान से ना भी कहें लेकिन हमारा दिल कह रहा होता है कि ये बात दुरुस्त नहीं। इसी तरह वो लोग जो नासमझी की वजह से कुरान पाक पर ये एतराज़ करते हैं कि इस पे अमल नहीं हो सकता, दर हकीकत वो अल्लाह ताला को अल-हकीम नहीं समझते। हमारा ईमान है कि इस किताब में जो बात है वो हिकमत पे मबनी है और जो भी उस पे अमल करेगा उसको उससे फ़ायदा होगा। अब चूँकि यहाँ किताब के नज़ूल की बात हुई, गालिब हिकमत वाले की तरफ से हुई, तो अब अल्लाह ताला उस ज़ात की पहचान बता रहे हैं। क्योंकि जब आप लोगों को कहते ना कुरान पढ़ो, वो कहते क्यों? आप कहते अल्लाह की किताब है, कहते अच्छा वो ठीक है, کیوں نہیں یہ سمجھتے؟ کیونکہ ان کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے اللہ ذات کیا ہے. آج لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہو جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ پھر اس بات کو سن کے مانیں نا. اب اس سے اگلی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوں گی, وہ نشانیات, وہ دلائل جو توحید کے طور پہ پیش کیے جا سکتے ہیں. فرمائے ان نفس سماوات والارض لآیات للمؤمنین, بے شک آسمانوں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی جو بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو اس کائنات میں بہت ساری نشانیاں ملیں گی. آیات کا لفظ ہے نا, یہ آیتن کی جمع ہے, اور آیت کہتے ہیں نشانی کو. یہ قرآن پاک کی آیتیں جو ہے نا, یہ بھی نشانی ہیں. کائنات میں نشانیاں کیسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. آپ کوئی بھی چیز دیکھیں, آپ کو اس کو دیکھ کر بنانے والا یاد آتا ہے. مثلاً آپ عموماً مثال دی جاتی ہے نا, بانی پاکستان, قائد اعظم کا تصور آئے تو فوراً ذہن میں کیا آئے گا؟ بانی پاکستان, اس کی بنیاد رکھنے والے. آپ کوئی بھی فرنیچر دیکھ لیں, کسی خاص کمپنی کا برانڈ نیم ہو, فوراً اس فرنیچر کو دیکھ کے آپ کو اس کمپنی کا خیال آئے گا کہ اس نے بنایا. جو کپڑا آپ پہنتے ہیں, کوئی آپ کو سی کے دیتا ہے, کوئی آپ کو بن کے دیتا ہے, فوراً اس کو دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں یہ فلاں نے دیا تھا, یہ فلاں نے میرے لیے بنا تھا. بالکل اسی طرح اس زمین اور آسمان میں بے شمار نشانی ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں فوراً اللہ کی یاد آنی چاہیے. لیکن عموماً آتی ہے, ہم تو پکنک کر کے کھا پی کے بریانی اور پراٹھے اور پتہ نہیں کیا کچھ ساتھ لے جا کے خوب پیٹ بھر کے گیپتے کر کرا کے آ جاتے ہیں, کم ہی خیال آتا ہے کہ دیکھو ذرا یہ پہاڑ کس نے بنایا, یہ بادل کیسے تیر رہے, اتنا پیارا آسمان کس نے بنایا. تو اصل جو سیر اللہ تعالیٰ میں کروانا چاہتے ہیں نا, وہ تدبر والی سیر ہے کہ دیکھو میں نے سب کچھ پیدا کیا, آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا, یہ نشانی ہے. لیکن ان نشانیوں سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ للمؤمنین, ایمان لانے والے. کیونکہ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ کائنات پہ غور و فکر, تدبر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائنس. جو بندہ لیبارٹری میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کائنات پہ غور کر رہا ہے, ستاروں کو دیکھنا, سولر سسٹم کو دیکھنا, کیسے حرکت کرتا ہے, کیسے گردش کرتا ہے. کتنے سائنٹسٹ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم برف کے اندر سے نکل کے آ جاتے ہیں, ہم یہ کہتے رہتے ہیں سردی بہت ہے, ہم یہ کہتے ہیں یہ پھسلن بہت ہے, ہم غلط باتیں بھی منہ سے نکالتے ہیں, لیکن کتنے لوگ اس کو غور سے سوچتے ہیں, اتنا پانی کہاں سے آیا, یہ کہاں سے جا رہا ہے, یہ کہاں جائے گا, یہ کس کے حکم سے برف بنی, یہ کس نے اس کو زمین پہ پھیلایا. ایک ایمان والے کی ساری زندگی اپنے رب سے باتیں کرتے گزر جاتی ہے, اسی لیے اس کو دوسروں سے باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. جو لوگ ہر وقت بولتے ہیں نا, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ زمین و آسمان میں بے شمار نشانی ہیں, اسی کا نام پھر تدبر ہے, اسی کا نام تفکر ہے. اور اگر بچپن سے ماں بچے کو یہ تربیت دے دے نا کہ کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے قریب ہونا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جوان ہونے پہ وہ بچے اللہ سے دور ہو. مائیں بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے چاند بھی دکھاتی ہیں, تو کوئی ماں ہوگی قسمت علی جو کہتی ہوگی دیکھو یہ چاند یہ اللہ نے بنایا, یہ کتنا پیارا ہے. اس وقت بھی وہ چندہ ماموں ہی یاد آ رہا ہوتا ہے, پھر وہ ماموں اور چچا اور نانیاں یاد دلاتے. چچا بیچارے کہاں یاد کرتے ہیں, نانیاں ہی یاد آتی ہیں, سارے میکے کے رشتے یاد کرواتے ہیں ہم لوگ. کسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھو یہ کس نے چاند بنایا. اور آپ دیکھیے کہ دین اسلام کی ہر چیز آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے, اور وہ دین جو آپ کو اللہ سے نہ جوڑے, کسی انسان سے جوڑ دے, کسی مادی چیز سے جوڑ دے, وہ دین نہیں ہو سکتا. وہ آپ کا نام ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کام ہو سکتا ہے, وہ اللہ کا کام نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ ان نفس سماوات والارض, ذرا سوچے آسمانوں میں کیا کچھ ہے, سورج, چاند, ستارے, فرشتے بھی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہے نا. پھر اور آسمانوں میں کیا ہے, بادل برستا ہے. اور آسمان دیکھنا ہو تو جہاز میں بیٹھیں اور اس کی ونڈو سے دیکھیں, جو اس وقت آسمان دکھتا ہے ایسے لگتا ہے کہ پوری زمین کے اوپر آسمان چھایا ہوا ہے, ایک نیلی چھتری, اس کے اوپر جو بادل تیرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی برف کی ٹکڑیاں پڑی ہوئی ہیں. ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے, ایک ایسے وقت پہ ہماری فلائٹ تھی कि जो बिल्कुल सुबह का खिला हुआ वक्त है, अमूमन फ्लाइट्स रात की या शाम की होती हैं, बिटवीन टाइम जब सूरज निकलता उस वक़्त नहीं होती। तो मेरे साथ मेरे वालिद भी थे, जब बाहर हमने देखा, मैं आज भी आपको कह सकती हूँ कि मेरी आंखों से वो मंज़र नहीं हटा। आसमान था और उस पर बड़े बड़े पर्ल्स थे, वल्ला ही पर्ल्स थे, जैसे मोती होते हैं ना, मोतियों के गुच्छे थे। तो मैंने अपने वालिद से पूछा ये क्या है, तो कहने लगे अल्लाह नूर उस समावाती वाला। और वो अब मैं सोचती हूँ कि वो बादल थे और सूरज चढ़ा हुआ था, तो सूरज की लाइट उस बादलों पे रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही थी और मुझे मोतियों के गुच्छे लग रहे थे। आज तक दोबारा मैंने वो मंज़र नहीं देखा। मैं जब जहाज़ में बैठती हूँ दिन में, मैं इस शौक से देखती हूँ बाहर कि जो बादल है मुझे उस तरह दिखे, कंगन जड़े हुए। मैं जब जन्नत में अल्लाह का तसव्वुर करती हूँ ना, तो मुझे वही याद आता है। इतना हुसन, इतना खूबसूरत लगता था, कैसे लगता था कि बस ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसको देख के झुकने को दिल करता है। ज़मीन की निशानियाँ देखें, हम सिर्फ ज़मीन पे ही देखें, मट्टी कितनी बड़ी निशानी है, क्या है ये भुरभुरी चीज़ें। अब आज के दौर में तो आप देखें कि हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बर्फ़ देखें, क्या ये अल्लाह की निशानी नहीं? हमारे कदमों के नीचे अल्लाह ने सफ़ेद बर्फ़ रख दी। कितने लोग हैं इससे अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करते हैं, इससे मार्फत महसूस करते हैं। हम सफ़ेद कपड़ा ज़मीन पर नहीं बिछाते कि पाँव लग जाएंगे, हम जूतियों के साथ उस बर्फ़ के ऊपर से गुजर के आते हैं, ना हमारे पाँव गंदे होते हैं ना बर्फ़ गंदी होती है। अल्लाह को परवाह नहीं। और मुझे तो अब इतना यकीन हो गया कि जन्नत में ज़रूर ज़मीन मिस की होगी। पहले पढ़ते थे सुनते थे, लोगों को भी कई दफ़ा सुनाया कि जन्नत की जो मट्टी है ना, ये मिस्क होगा, खुशबू होती बहुत कीमती, यानी ख़ास किस्म की ये चीज़ होती है जो हिरन के जिस्म से निकलती है, खुशबू होती है उसके अंदर। तो जन्नत की मट्टी जो है ना उसकी होगी। तो मैं आज भी आते हुए कह रही थी कि कौन कहता है कि नहीं हो सकती। हम तो सोचते हैं उसकी एक ज़ाफ़रान जैसे होता है, यानी हम कहते हैं एक चुटकी उसकी इतनी कीमती है, इतनी ज़्यादा ज़मीन कैसे होगी। फिर मुझे याद आया कि जन्नत में भी तो यही होगा, अल्लाह ने इतनी नेमतें वहाँ बिखेरी होंगी, किसी को किसी चीज़ की कदर ही नहीं रहेगी। लेकिन हम सूसू सूसू कर रहे होते हैं, सुरसुर कर रहे होते हैं, मौसम गंदा है, मौसम ख़राब है, लेकिन हम गौर नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन फिस समावाति वल अर्दी लायात लिल मोमिनीन। गौर करो, ईमान की आंखों से देखो, तुम्हें जितनी मोहब्बत इस कुरान को पढ़ के अल्लाह से होती है, उतनी तुम्हें इस कायनात में घूमते हुए अल्लाह से होगी। फिर आगे फरमाए वफ़ी खल्किकुम। यहाँ से आप पॉइंट्स पे छोटे छोटे 1-2 लगा सकते हैं। 6 निशानी हम देखेंगे इसमें। पहली चीज़, तुम्हारी अपनी जानों में, खुद तुम्हारी अपनी ज़ात में अल्लाह की निशानी है। कैसे? कभी अपने आप को देखा है? एक तो वो देखना है ना जो शीशे के सामने घूम घूम के देखते हैं, और कभी एक एंगल से और कभी दूसरे एंगल से, कभी एक साइड देखते हैं और कभी दूसरी। लेकिन अगर एक इंसान अपने जिस्म के अंदर फैले हुए निज़ाम को देख ले तो अपने रब को पा जाए। कहा तुम अपने अंदर देखो, अल्लाह ने तुम्हारी ज़ात में कितनी निशानियाँ रखी हुई हैं। मसलन आप देखिए कि हम खाना खाते हैं ना, सभी कुछ ना कुछ खाते हैं, उसके बाद क्या हम हुक्म देते हैं अपने जिस्म को कि इस खाने को मुंह के रास्ते फूड की पाइप से यानी एसोफेगस से स्टमक में ले जाओ? फिर क्या हम कभी आज तक हमने एक दफ़ा भी खाना खाने के बाद कहा कि ओ मैदे या ओ मेरे स्टमक, अब इस खाने को ग्राइंड करो, इसके अंदर तुम अब रतूबतें डालो? एक चक्की चल रही है, आपको पता है हमारे अंदर यूँ फूड प्रोसेस होता है, ये इस तरह की कैफियत होती है। जैसे आप कभी आटा गूंदने वाली मशीन को देखें ना, तो इस तरह से जो वो घूमती है ना, तो हमारे स्टमक में इस तरह की मूविंग्स होती हैं, लेकिन वो खाना उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। फिर वहाँ से उसके अंदर इतना नरम हो चुका होता है कि जज्ब हो, फिर हमारी बड़ी आंत में जाता है, उसके अंदर से अल्लाह ताला उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के जो गंदी चीज़ें होती हैं उसको अलग कर देते हैं, जो साफ़ चीज़ें होती हैं उसको उसी खुराक की नाली की जो दीवारें उसके अंदर जज्ब करवा लेते हैं। यानी हमारे जो स्टमक है ना, उसके अंदर नालियाँ होती हैं। हम कहते हैं क्या ज़रूरत है पेट में अंतड़ियों की। अल्लाह ताला हमें गौर करने की दावत है, सारी माएँ मिल जाएँ, सारे बाप मिल जाएँ, क्या बच्चे की तख्लीक हो सकती? माँ के पेट में बच्चा किन किन मराहल से गुजरता है किसको पता है? तो अल्लाह ताला कहते हैं वफ़ी खल्किकुम, तुम्हारी तो अपनी तख्लीक में इतनी निशानी है, तुम दूसरों को कहाँ देखो? सिर्फ अपने चेहरे को अगर इंसान देख लेना, तो मैं सोचती हूँ कि कायनात की सारी चीज़ों से खूबसूरत इंसान है। ठीक है, कुछ जानवर हमें बड़े प्यारे लगते हैं, बिल्ली, टेडी बियर, तोता, परिंदा, लेकिन सब की चीज़ों को जमा करें और दूसरी तरफ इंसान की शक्ल को देखें, ये सबसे ज़्यादा बैलेंस है। हमारी स्किन देखें कैसी स्किन है, अगर इसकी जगह कांटे लगे होते, मुंह पे हाथ लगाते तो चीखें निकल जाती। क्या एक से ज़्यादा खुदाओं की गुंजाइश हो सकती है? अगर अल्लाह ताला हमें पैदा करता और कायनात को कोई और पैदा कर रहा होता, आपस में जो रब्त है, मैं तो कहती हूँ मुझे कोई मौका दे ज़िंदगी में, अब 2 साल 2.5 साल मैं बिल्कुल फारिग होकर फिर साइंस पढ़ूँ। यानी जो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं साइंस के बारे में, अब मुझे समझ आती है। हम कोल्ड ब्लडेड हैं, हमारे जिस्म के अंदर खुद बहुत टेम्परेचर को सेट करने की है। कुछ जानवर है वो कोल्ड ब्लडेड नहीं होते। आज भी आते हुए हम देख रहे थे तो बर्ड्स थे ना बाहर, कबूतर थे, तो मैंने कहा इनके ऊपर ना कोई स्वेटर है ना कुछ है, इनको ठंड नहीं लगती, लेकिन अल्लाह ने उनके पर है उनको इतना गर्म बना दिया और उनके ब्लड के अंदर इस तरह से फीलिंग्स डाल दी कि वो खुद ब खुद फिज़ा के मुताबिक सेट हो जाते हैं। जिनको स्वेटर बुन बुन के देने वाला कोई नहीं था, अल्लाह ने उनके जिस्म के अंदर खुद ही इंतज़ाम कर दिया। तो ये अल्लाह की निशानी है। फिर दूसरी चीज़, वमा यबुस्सु मिन दाबतिन, और जो कुछ ज़मीन में उसने फैला रखे हैं, ये क्या है? दुनिया में जो भी जानदार है, यानी खुद तुम्हारी और उन जानवरों की पैदाइश में भी जो उसने ज़मीन में फैला रखे हैं, आयातुल लिकौम यूकिनून, निशानियां हैं अलबत्ता यकीन लाने वाली कौम के लिए। यानी इसमें अब दूसरों पे गौर करवाया जा रहा है कि देखो कैसे सब मुख्तलिफ तरीके से लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की शान किस तरीके से इसमें उन्होंने निशानियां रख दी कि ये दाबा, दाबा कहते हैं दबीब से, हल्की चाल चलने वाला, जैसे नरम नरम चाल होती है ना, इसीलिए भी हर मूविंग क्रिएचर को दाबा कहते हैं। यानी हर चीज़ जो हरकत कर सकती है उसमें गौर करके देखें। हिरन का चलना देखें कैसा है, चौकड़ियाँ भरता है। बिल्ली देखें दबे पांव चलती है, उसके चलने की आवाज़ ही नहीं आती। कुत्ते को देखें उसका चलना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। फिर हम इंसान कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो हम सिर्फ खूबसूरती के लिए बना देते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा नुक्ता आपके सामने रखूँगी कि दुनिया में इंसानों के चीज़ें बनाने के अंदर जो चीज़ें यूज़फुल होती हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो खूबसूरत भी हों। ये जुमला लिखें फिर आपको समझ आएगा। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें हमारे लिए कारआमद हैं वो खूबसूरत भी हों, और इसके ऑपोजिट वे में जो चीज़ें खूबसूरत है ज़रूरी नहीं कि वो कारआमद भी हों। मसलन हमारे डेकोरेशन पीसेस, आपको पता है कि हमें डेकोरेशन पीस बना बना के सजाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी काम की चीज़ें खूबसूरत नहीं। मसलन वैक्यूम क्लीनर, डल सा, मोटा सा, पतला भी होगा, उसको ज़रूरत के तहत बनाया जाता है। वो कहाँ मुड़ सके, उसकी पाइप कितनी लंबी हो, उसको कैरी करना कितना आसान हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो खूबसूरत भी हो। और भी कई मिसालें ली जा सकती है ना, आपकी ग्राइंडिंग मशीन, उसमें अफादियत का पहलू है, इसीलिए फिर हम क्रिस्टल के थोड़े डेकोरेशन पीस बना लेते हैं कि चलो खूबसूरत चीज़ें भी रहें। लेकिन अल्लाह की तख्लीक में क्या है कि जमाल और कमाल दोनों साथ हैं। हमारा कमाल फ़र्क है, जमाल फ़र्क है। अल्लाह ताला की कायनात में चीज़ें खूबसूरत भी हैं, और सिर्फ यूं नहीं पड़ी हुई कि ये एक डमी चीज़ है, हर खूबसूरत चीज़ के पीछे उसका कोई मकसद भी है। अब ज़रा देखिए, एक चांद वो है जो हमारी शायरी में पेश किया जाता है, महबूब का चेहरा चांद का, और एक चांद अल्लाह का है। अब हमारी रात को खूबसूरत करने के लिए अल्लाह ताला ने चांद दे दिया, क्या चांद का कोई मकसद है कि नहीं, कि सिर्फ खूबसूरत बना हुआ है? हम तो अपनी दीवार पे एक बेकार डेकोरेशन पीस सजा देते हैं इतने हज़ारों का ख़रीद के। अल्लाह ने आसमान के ऊपर एक खूबसूरत चांद नहीं सजाया कि बस ऐसे ही इसको लोग देख के खुश होते रहें और माँ मामू याद कराती रहें बच्चों को। अल्लाह ने उस चांद के पीछे कितने मकासद रखे। हमारे फलों में जो जूस पैदा होता है वो चांद से पैदा होता है, हमारी रात और दिन का घटना बढ़ना चांद से, समंदर के जो मद्दोजज़र हैं उसका चांद की तारीखों के साथ ताल्लुक है। तो इससे पता चलता है कि जब यकीन आता है ना, फिर अल्लाह की ये निशानियाँ दिखती हैं। बेयकीनी की तो नमाज भी नमाज नहीं होती, बेयकीनी से तो आप कोई काम करेंगे ना तो तरद्दुद होगा। जिस वक्त आपको इस बात का यकीन आ जाता है ना कि ये कायनात मेरे रब की है, उसने पैदा की है, उसने बनाई है, इंशाल्लाह आपको यकीन आएगा। फिर फरमाया, वक्त इलाफ़ लैल व नहार, और रात और दिन के आने और जाने में, वमान ज़ल्लल्लाहु मिनस्समाई मिर रिस्किन, और जो आसमान से अल्लाह ने रिस्क नाजिल किया, फ़ाहया बिहिल अर्द बादा मौतिहा, फिर इससे ज़मीन को मरने के बाद ज़िंदा कर दिया, व तस्रीफ़िर रियाह, और हवाओं की गर्दिश में, आयातुल्ली कौमी याकिलून, अल्बत्ता बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। कितनी चीज़ें इसमें आ गई, पहले इंसान की ज़ात, फिर जानदार चीजें, अब रात और दिन का आना जाना क्या निशानी है? एक एक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रात और दिन के आने जाने में क्या निशानी है। अगर रात ना हो तो इंसान काम कर करके थक जाए, पागल हो जाए। आप देखिए कि जब दिन लंबे होते हैं तो पूरा पूरा दिन लोग काम करते हैं ना, लेकिन रात एक किस्म के सुकून और इस चीज़ की दलील है कि अब काम ख़त्म, अब सूरज भी सो गया, अब तुम भी सो जाओ। फिर आप देखिए कि रात गम की अलामत होती है ना, जब रात के बाद सुबह होती है ना तो इंसान को इस चीज़ का पैगाम मिलता है कि तुम्हारे गमों के बाद भी खुशियों की सुबह होगी। इसमें मायूसियों से ज़्यादा उम्मीद का पहलू है। जब दिन ढलता है, बहुत दिन होता है और वो रात में ढलता है, तो इंसान के तकब्बुर को तोड़ता है कि देखो जिस तरह ये दिन कितना चमक रहा था और अब ख़त्म हो गया, तुम्हारा अरूज भी नहीं रहना। कोई फ़ख्र ना करे, कोई तकब्बुर ना करे, एक ही ज़ात है जिसको हमेशा रहना है और वो अल्लाह की ज़ात है। यानी ये रात और दिन कायनात हमें कितना कुछ सिखाते हैं, ये अल्लाह ताला ने इस कायनात पे गौर के नतीजे में हमें बताया। फिर उसके बाद देखिए आसमान से जो रिस्क उतरा, यहाँ कुरान पाक का ये वो मुकाम है कि बारिश को रिस्क कहा गया। ये नहीं कहा कि जो आसमान से मिमाइन पानी उतारा, बल्कि क्या कहा, हमने रिस्क उतारा। क्यों? इसलिए कि कायनात में जितनी भी फसलें पकती हैं, जो भी चीज़ें, वो आसमान के बारिश के पानी से। एक साल बारिशें नहीं होती तो कहत पड़ जाता है। जिन इलाकों में बारिश नहीं होती वहाँ देखिए कि बिल्कुल ही कितने लोग कहत सदा हुए में, उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं। फिर इसके बाद देखिए कि ज़मीन मौत के बाद ज़िंदा हो जाती है, कैसे, बिल्कुल बंजर होती है। किसी एक ऐसी जगह से इंसान गुजरता है कि जहाँ से कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन बाद में वहाँ आप देखते हैं तो सब्ज़ा हो चुका होता है। आज जो दरख्तों की टहनियाँ सूखी हुई दिखती हैं, कभी आपको लगता है कि इन पे पत्ते भी होंगे और वो पत्ते सब्ज़ के बाद फिर पीले और सुरख भी होंगे। ये अल्लाह की शान है ना कि कैसे बंजर ज़मीन को हरा कर देता है। तो एक इंसान जो बंजर है, जो आज डिप्रेशन में, आज उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, अल्लाह ताला उसको नई उम्मीद दिलाता है कि देखो उठो, जैसे ये पत्ते उतरे हुए दोबारा लग जाते, तुम्हारी ज़िंदगी में भी खैर आएगी। मत हिम्मत हारो, तुम बीमार हो गए हो, अपने पर रहम मत खाओ, तुम्हें दोबारा अल्लाह ताला हरा कर देगा, सरसब्ज कर देगा। कोई भांज औरत है जिसको उम्मीद नहीं औलाद की, अल्लाह उसको कहता है गम क्यों करते हो, देखो इसके सारे पत्ते उतरे थे फिर ही इसके बाद अगले हो गए। अल्लाह कितने पैगाम देता है कि सारे उतरते हैं फिर लगते हैं दोबारा। मुसीबत अपनी शिद्दत पे आती है, बीमारी अपने जोश पे आती है, फिर सेहत मिलती है। व तशरीफ रियाह, हवाओं का चलना। अब देखिए हवाएं कभी शमाल से चलती हैं, कभी जनूब से, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी बहरी हवाएं, कभी बरी हवाएं, कभी रात को, कभी दिन को, कभी समंदरी हवाएं, कभी खुश्की की तरफ से हवाएं। कुछ हवाएं ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ पौधों के दर, फूलों के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको उठा के दूसरी तरफ डालने वाली होती हैं, और कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जो जिस पे लगती हैं लू लगती है और वो जला के रख देती हैं। एक हवा और वो अल्लाह के हुक्मों पर चलती है। ये कायनात हमें बोल बोल के सिखा रही है कि हर चीज़ अल्लाह के आगे झुकी हुई है। देखिए हवाओं में कितनी ताकत है। अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत का खुलासा है कि सिर्फ एक अंगूठी के सुराख के बराबर हवा खोली थी कौम आद पे और उनके घर उड़ गए। सिर्फ हवा इतनी सी अल्लाह ने खोली, ये अल्लाह के लश्कर हैं। जैसे मुल्कों की फौजें होती हैं ना कि आपने इतने ग्रुप्स वहाँ भेज दो, उनको लड़ो, उनसे मरो, उनको मारो, ये पूरी कायनात अल्लाह ताला की फौजें हैं। हवाओं को हुक्म देता है अल्लाह ताला। जब देखते हैं ना कि इंसानों में कोई इंसान जो है वो सरकश हो गया, तो फिर अल्लाह अपनी नेमतों में किसी एक नेमत को सरकश कर देता है। कौम नूह पे अल्लाह ने एक पानी को कहा जाओ तुम सरकश हो जाओ, खुला बरसो, इतना बरसो इनके ऊपर कि ये डूब जाए, डूब गए। कौम आद पे अल्लाह ताला ने हवाओं को भेजा। नमरूद को मारने के लिए अल्लाह ने मच्छरों की फौज को भेज दिया। अबाबील भेज दिए अब्रह के लश्करों को मारने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह का कितना मानती हैं। हमारे लिए इसमें यह भी सबक है ना कि ये इतनी बड़ी, आसमान बड़ा कि हम बड़े, चांद बड़ा कि हम बड़े, ये सब बड़े। तो जब ये इतने बड़े होके अल्लाह की मानते हैं तो मैं इतनी छोटी होके उसकी क्यों नहीं मानती? इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला कहते हैं लिकौमी याकिलून, तीसरी चीज़ आ गई, पहले मोमिनीन, फिर यूकिनून, और अब अक्ल की बात है। यानी ईमान को पीछे भी डाल दो, अपनी अक्ल को इस्तेमाल कर लो, तो तुम्हें ये चीज़ें बोल बोल के बताएंगी कि ये सब किसने पैदा किया। बहुत सारे लोग जो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं और अल्लाह ताला के वजूद के मुनकिर होते हैं, वैसे ही करते हैं। मैं जब यहीं लास्ट ट्रिप में हमें एक मौका मिला शिप पे जाने का, तो बिल्कुल एंड के ऊपर मैं बाहर अरशे पे आई, तो वहाँ दो तीन लड़कियाँ खड़ी थी। ऐसे मैंने उनसे बात शुरू कर दी और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ उनसे, आर यू मुस्लिम? मैंने कभी ये नहीं कहा आर यू क्रिश्चियन, या आर यू जियो, या आर यू ہندو نے کیونکہ فطرتاً ہر مسلمان ہے، تو میں نے انہیں کہا آر یو مسلم، تو کہنے کی نو. میں نے کہا واٹ آر یو، کہتی آئی ایم ایتھیسٹ، آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. میں نے کہا اچھا خیر بات کرتے رہے. تو میں نے کہا کہ اچھا پھر تم یہ بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے نا، سورج یہ آسمان چاند از جسٹ لائک کو انسیڈنسز. یہ ایک بڑا خوبصورت لفظ بولتے ہیں امریکنز یا دوسرے بھی، اتفاقات کا مجموعہ ہے. ایک اتفاق سے چیز ہوئی، پھر دوسری اتفاق سے ہو گئی، پھر اتفاق ملتا ہے کہ اتفاق سے سورج بن گیا، اتفاق سے چاند بن گیا. بس کی سنتی رہی. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جس جہاز میں ہم بیٹھے یہ چل رہا ہے کہ ایسی کوئی چلا رہا ہے اس کو؟ کہتی یس کوئی چلا رہا ہے. میں کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس کو کوئی نہیں چلا رہا، کوئی پائلٹ نہیں اندر، ایسے ہی ہمیں انہوں نے دیا ہوا، یہ خود ہی چل رہا ہے. کہ اٹس ناٹ پاسبل. تو میں نے کہا اس چھوٹے سے سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا جہاز خود نہیں چل سکتا، اس کائنات کے اندر جس میں اتنا ویکیوم ہے یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے؟ کہتی میک اے لاٹ آف سینس. کس بات کی سینس تو بہت بنتی ہے. بس یہ باتیں کر کے پھر میں ہٹ گئی کہ اب یہ ضرور سوچے گی. یعنی غور کرے نا انسان، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقوم یعقلون، کسی دین کی ضرورت نہیں، کسی الہامی کتاب کی ضرورت نہیں، تم اپنی عقل سے پوچھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ نے بنایا. اور وہی یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کے جو مختلف طریقے ہم پیچھے کئی دفعہ پڑ چکے، اس میں ایک عقل بھی ہے. انسان کی عقل پہ اگر کسی کی چھاپ نہ ہونا تو وہ عقل بھی انسان کو گائیڈ کر سکتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے. کوئی مذہب کے ساتھ تعلق رکھے نہ رکھے، یہ فطرت میں انسان کی انسٹنکٹ میں ہے. آپ دیکھیے کہ ایک بلی ہے نا، آپ اس کو دودھ دیتے ہیں تو وہ بڑے پیار سے آپ کے پاؤں چاٹنے لگتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اچھا آپ نے دودھ دیا. لیکن وہی بلی آپ کے کچن میں سے چپکے سے گوشت کی ایک بوٹی اٹھا کے بھاگتی ہے، تو کبھی وہاں کھڑی ہو کے کھائے گی؟ کہاں کھاتی ہے، دور جا کے چھپ کے کھائے گی. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ وہ دودھ جو آپ نے اس کو ڈالا ہے یہ اس کے لیے حلال ہے، یہ ٹھیک ہے. اور یہ جو گوشت کا ٹکڑا میں نے اٹھایا یہ چوری کیا میں نے، یہ میرے لیے حرام ہے. ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والی بلی کو جب یہ پتہ ہے حلال ہے یہ حرام، تو انسان کی عقل کو کیوں نہیں پتہ کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل استعمال کرو. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 6 میں، تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ کتنی پیاری بات کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ہم نے تو یہ باتیں بتا دی، یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اس میں توحید کے دلائل ہیں، اس میں بہت سارے برہان ہیں. اب بھی جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو وہ کس بات کے بعد ایمان لائیں گے؟ کس بات کے بعد ایمان آئے گا؟ یہاں دیکھیے کہ بعد حدیث اللہ و بعد آیات ہی، یہ مراد ہے. یعنی اللہ کے باتوں کو، بعد اللہ کا لفظ ہے نا، اللہ کے بعد نہیں بلکہ بعد حدیث اللہ. قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ. جیسے حدیث نبوی ہے نا، حدیث کہتے ہیں بات کو، نئی چیز کو حدث کہتے ہیں، اسی سے پھر محدث ہے بدعت کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کے بعد پھر کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اور اس کی آیتوں پر تم ایمان لاؤ گے. یعنی اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی اس کے بعد تم کس پہ مانو گے؟ اور سورۃ زمر کی آیت نمبر 23 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین چیز بات نازل کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک پہ غور و تدبر کرنا یہ سراسر عبادت ہے. لیکن کچھ لوگ بڑے ہی سخت دل ہوتے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ وہ آگے بتایا جا رہا ہے، ویل لکل افواق اسیم، تباہی ہے ہر اس بہتان تراش اور گناہگار کے لیے. کون؟ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، جس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یسر مستکبرا کلم یسمعها، پھر وہ انہیں سنتا ہے، ازراہ تکبر اپنی بات پر یوں اڑ جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ سٹبن قسم کے، ٹھیٹ قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. یہاں لفظ افاق آیا ہے، افاق سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے. مراد کیا ہے؟ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. افق کہتے ہیں طوفان کو، یعنی طوفان جو ہوتا ہے نا، تو جھوٹ کو عفق کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی تو اس کو بھی آیتِ عفق کہتے ہیں، سورۃ نور میں گزر چکی آیتیں۔ تو جھوٹا شخص جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا طوفان گھڑ لیتا ہے، یعنی جس طرح کہنا چاہیے نا بہتان گھڑ لینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات میں اللہ کی بجائے دوسروں کا تصرف سمجھتے ہیں، شرک کرنے والے، اپنے بتوں اور دیویوں کے نام پہ ان چیزوں کو لگانے والے کہ فلاں دیوی کی وجہ سے یہ عذاب آیا۔ عذاب تو وہ کہتے ہی نہیں ہیں نا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہریکینز آتے ہیں، نارتھ امریکہ میں خاص طور پہ بہت سارے ہیں، جس کو آپ سمندری طوفان کہہ لیں گے، تھنڈر اسٹورم کہہ لیں، یا جیسے سونامی ایک آئی تھی، تو اس کے لیے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ چند سال پہلے ہیوسٹن میں بھی ایک آیا تھا، تو کسی کو کسی کو ریٹا، کسی کو کچھ نام ہے نا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ نام کن کے ہیں۔ یہ نام وہ جو فلاں طوفان کو فلاں نام، لوزیانا میں آیا تو اس کا یہ نام، ہیوسٹن میں یہ نام، یہ نام ان کی دیویوں کے ہیں۔ اور جب اس کی بھی ہسٹری میں جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ اس دیوی نے طوفان بھیجا، اور ہم آنکھیں بند کر کے پیار سے ریٹا 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 کہتے رہتے ہیں، ریٹا آیا ہوا ہے، کرسٹینا آئی ہوئی ہے، فلاں آئی ہوئی ہے، وہ اصل میں ان کی دیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ باندھتے ہو، کائنات میری ہے، میرے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، میں ان کو روکتا ہوں، تم فلاں دیویوں کے نام پہ لگاتے ہو۔ اور کچھ نہیں تو آج کے دور کا سب سے فیمس شرک ہے مدر نیچر، از جسٹ لائک مدر نیچر، یہ تو خود ہی ہو رہا ہے، یہ کوئی اس میں سزا اور جزا نہیں ہے، یہ تو کچھ سالوں کے بعد پھر یہ ہوتا ہی ہے، اور ہوا کا پریشر بڑھتا ہے تو یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ افاق ہیں، ویل لکل افاق نسیم، بہت بڑی خرابی ہے اس کے لیے جو بہت گناہ گار ہے۔ اسیم فعیل کا وزن ہے، یعنی بہت گناہ گار شخص، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور ہلاکت کو بھی ویل کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان آیتوں پہ غور کرنے کی بجائے اس کو سن کے انسنا کر دیتے ہیں، ان کے کان پر جون ہی نہیں رینگتی، مانگنے کے لیے سنتے ہی نہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ دوسروں سے جب انسان معروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات بھی اس کو اچھی نہیں لگتی، اور بالکل اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو خبر دے دو کس کی، فبشرہ بعذاب علیم، بس بشارت دے دو اس کو دردناک عذاب کی۔ وإذا، اور جب، علم من آیاتنا شیئا نتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین، اور جب ہماری آیات میں سے کچھ اس کے پلے پڑ بھی جاتا ہے تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے، اسے لوگوں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ کیا، من ورائهم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہوگی، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئاً، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا وہ نہ ان کے کچھ کام آئے گا، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور انہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہاں ویسے تمام لوگوں کو جو تکبر کی وجہ سے بات کو سنا انسنا کر دیتے، ان کا انجام بتایا گیا کہ ایسے لوگ پھر ان کے پیچھے کیا ہے، عذاب ہے۔ یا دیکھیے، وَإِذَا عَلِمَ، کچھ نہ کچھ بات اندر ہے، سمجھ آتی ہے کہ سب کچھ مقصد نہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات جو کچھ بھی پیدا کیا ہوا ہے یہ سب ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تھوڑی سی اندر ایک چونت جاگتی ہے، یعنی ایک ہلکی سی کرن آتی ہے ان کے اندر ہدایت کی، لیکن پھر ڈھیٹ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ سنا ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہو جو اپنی بڑائی کے زوم میں مبتلا ہو، وہ دوسرے کی بات سننا نہیں چاہتا، اور اس کے کچھ انداز ہوتے ہیں، کچھ ایکشنز ہوتے ہیں، انسان اس کا ذکر سن کے ہی بات کو بدل دیتا ہے، انسان سنی انسنی کر دیتا ہے، لیکن کسی لمحے میں اس کے کانوں میں کوئی ایسی بات پڑ جاتی ہے کہ اس کو لگتی ہے کہ بات تو سچ ہے، یہ بات تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریئلائزیشن کرے کہ ہاں واقعی بات ٹھیک ہے، میرا جھٹلانا یا میری مخالفت درست نہیں تھی، لیکن وہ اندر کی انا کا احساس اس کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں۔ کبھی آپ دیکھیں کہ کچھ محفلوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو حق بات بالکل سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد سنا سنا کر دیتے ہیں، کیوں کہ ماننا نہیں چاہتے، ان کا دل نہیں چاہتا۔ کسی جگہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ بھائی چرچ میں جانا کیوں منع ہے، مسلمان بچوں کو ماں باپ چرچ میں کیوں نہیں جانے دیتے؟ پوچھنے والی بچی تھی ینگ، میں اس کا منہ دیکھ رہی، میں نے کہا آپ یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہی ہیں؟ کہنے لگی نہیں آپ مجھے بتائیں، یس نو میں بتائیں کہ چرچ میں جانا منع ہے کہ نہیں، کیوں منع ہے، منع ہے تو کیوں منع ہے؟ میں کبھی بھی ایسے سوالوں کے جواب نہیں دے۔ میں نے اس کو سے دیکھا، میں نے کہا پہلے آپ بتائیں کہ آپ چھ وقت نماز پڑھی ہیں؟ کہتی آپ یہ پوچھ رہی ہیں، میرے بات کا جواب ہے۔ میں نے کہا کہ میری بات کا جواب یہ ہے کہ اگر फिर उस्ताद जो थी या वो भी थी, उसने मुझे कहा कि मैं नहीं पढ़ती, लेकिन इस सवाल का जवाब देंगे चर्च जाना चाहिए कि नहीं। अब मैं उसको बराह रास्त कहना चाहिए थे, तो जा सकती हो, कि मैंने उसको पहले में कहा देखे कि इस्लाम में हर काम तरतीब से शुरू हो, अगर एक शिर्क करता है ना तो उसके बाद वो जो मर्जी गुनाह करे उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि शिर्क जुदगी में उसके बाकी ने क्या भूल नहीं होंगी। इसी तरह जो नमाज नहीं पढ़ता तो उसको पूरी आजादी वो कुछ भी करे, तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो जा सकता है, क्योंकि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। आप मुझे सीधा सीधा बताएं हम क्यों ना जाएं, और हम तबलीग करते हैं, ये होता है वो होता है, फिर वो भी हमारी मस्जिदों में नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं तो आपकी बात का जवाब ही नहीं दे रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि पहले अपनी नमाज की फिक्र करें। अब बात समझ आ गई, लेकिन चूंकि वो रौनक थी ना अंदर बड़ी हुई, तो ऐसे ही ज़रा सा चेहरा से एक्शन से उसने साबित किया हाँ मेरी बात का तो जवाब दिया नहीं, कुछ और कह दिया, तो पलट के चली गई। तो मुझे याद आ जाती बातें कि अंदर दिल में बात उतर जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं हमारे अंदर कि जो हमें फिर दीन की तरफ आने नहीं देती। यही अल्लाह ताला कह रहे हैं, अपनी बड़ाई का एहसास कभी बंदे को दूसरे की बात समझने नहीं देता। जब तक आपके अपने दिल में कन्विंस नहीं होती ना, आप कभी दूसरे की बात को कन्विंस नहीं कर सकते। यानी जिस चीज़ से आप मुतासर खुद नहीं होते, आप दूसरे को नहीं करने देते। और जब तक इंसान एक ख़ास खौल से बाहर नहीं निकलता ना, उसको बात नहीं समझ आती। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो खुद अपनी बड़ाई के एहसास में, इनको अल्लाह की बड़ाई कहाँ दिखेगी? कभी दिख भी जाए तो मजाक उड़ाने लगता है, और देखे हमने दीन पढ़ने वाले, और हमने देखे मौलवी, और ये ऐसे और वैसे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं इनको छोड़ दो इनके हाल पे। ये जो लफ्ज़ यहाँ वरा है ना आयत नंबर 9 के शुरू में, ये वरे और परे दोनों के मानों में आता है। सूरह काहफ आयत 106 में भी ये लफ्ज़ आया, यानी आगे के मानों में भी आता है और पीछे के मानों में भी आता है। और पर्दे को कहते हैं आड़ को, क्योंकि एक चीज़ पर्दे की एक तरफ होती है, दूसरी दूसरी तरफ होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इनके वरागे कैसे, बरज़ख, वरा बरज़ख को भी कहते हैं, यानी मौत के पर्दे के बाद जो चीज़ इनको आगे दिखेगी वो जहन्नम होगी। इधर भी जहन्नम, उधर भी जहन्नम, मुराद ये कि इनको दुनिया में भी अजाब होगा, आखरत में भी जहन्नम का अजाब होगा। और इनको ये नहीं पता कि आज दुनिया में जो गलत कामों के नतीजे में इनको सजाएं मिल रही हैं, ये वहाँ भी मौजूद होंगी। तो लिहाजा ऐसे लोगों को क्या होगा, वला युग्नी अन्हु मा कसबू शैयन, जो दुनिया में इन्होंने कमाया वो कुछ भी इनके काम नहीं आएगा। जो इनके दोस्त थे, जो इनके मददगार थे, जो माबूद थे, जिनकी बातों में आके ये दीन को छोड़ते थे, इनमें से कोई इनके काम नहीं आएगा। इसी तरह वो औलादें, वो माल, वो जत्थे, वो बड़े बड़े गिरोह जिन नामों पर ये फख्र करते थे, क़यामत के दिन वो कोई इनको काम नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि वो लोग तो खुद उस वक्त परेशानी में होंगे, और क़यामत वाले दिन ये तनहा खड़े होंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि मिन दूनिल्लाहि औलिया, और वो तमाम चीज़ें जिनको इन्होंने अल्लाह के सिवा वली बना रखा था, औलिया बना रखा था, वो चीज़ें भी इनके पास नहीं आएंगी। वलहुम अजाबुन अजीम, और इनके ऊपर बड़ा अजाब है। पूरी बात का जो खुलासा है ना, वो ये है कि जो लोग कायनात पे गौर नहीं करते, तकब्बुर की वजह से बड़े बनते हैं, और इनकार की वजह से तकब्बुर, और तकब्बुर की वजह से हक को झुटला देना, ये वो लोग हैं कि जो किताब की तरफ आते ही नहीं हैं। आप कभी लोगों की रौनक देखा करें किताब के मामले में, इस तरह से बात करते हैं कि जैसे किताब की ज़रूरत ही नहीं है। छोड़े, अब आज के दौर में हम किताब पढ़े, लो हमने नहीं पढ़ी, बहुत भी शौक रखेंगे ना, ये कहेंगे हमारे बच्चों को पढ़ा दो, हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो ये सोच लेते हैं कि हम चूँकि बड़े हो गए, हमने ज़िंदगियाँ गुजार ली हैं, और हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और सुनी अनसुनी करते। और मैं सोचती हूँ कि एक सेल का साइन लग जाए ना किसी भी शहर में, तो हम कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे घर में पहले से वो चीज़ मौजूद है कि नहीं। हम ये भी सोच के ले लेते हैं कि चलो जी लेके रख लेते हैं, किसी को तोहफे में दे देंगे, अच्छा किसी दोस्त के लिए ले लेते हैं। वहाँ खड़े खड़े लोग फ़ोन घुमा रहे होते हैं, तुम्हारे लिए भी ले लो, क्योंकि उसकी कदर का एहसास है या उसके अंदर दिल पड़ा हुआ है ना। लेकिन इसके बरक बाज़ दफ़ा कुरान की दावत दी जाए, लोग इतना मतलब लाउबाली किस्म का एहसास, जैसे बच्चा है ना उसके सामने आप कोई बात कह दें जिससे उसको फ़ायदा हो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे कैंडी चाहिए। इस तरह बाज़ बच्चों वाला रवैया इख्तियार करते हैं कुरान की दावत पर। क्यों? अंदर की बड़ाई।